जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على سيد المرسلين, الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله, الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। فدی چینل کے ناظرین, گزشتہ ہفتے ہم نے کھانسی کے اوپر بات کی تھی۔ کھانسی کا دوسرا سلسلہ آج ہم لے کر آپ کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو کچھ چیزیں کھانسی کے متعلق رہ گئی تھیں, آج انشاءاللہ عزوجل ہم اس سلسلے میں آپ کو عرض کریں گے۔ تو آج ہم تھوڑا سا کھانسی کو جو پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ کھانسی بیسیکلی کیا ہوتا ہے, کھانسی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کھانسی ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے پھیپھڑے اور آلات تنفس یعنی ریسپائرٹری سسٹم میں اگر کوئی موذی چیز یعنی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو آسان طریقے میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کھانسی ایک دفاعی حرکت ہے جو پھیپھڑے اور آلات تنفس موذی چیز کو دفع کرنے کے لیے, در حقیقت کھانسی ایک علامت مرض ہے جو آلات تنفس میں پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں, ان میں سردی لگنا, دائمی نزلہ, زکام, گرد و غبار, بخار, خسرہ, مختلف قسم کی اس میں ہوتی ہیں جس میں کھانسی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ کھانسی کی عمومی طور پہ دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں جس میں خشک کھانسی اور تر کھانسی۔ خشک کھانسی جس میں دھسکا یعنی کہ ایک زور سے دھسکے والی آواز آتی ہے, اس کو ڈرائی کف کہتے ہیں یعنی کہ خشک کھانسی کہتے ہیں۔ اور تر کھانسی عمومی طور پہ بچوں میں اور بوڑھوں میں ہوتی ہے جو سردیوں کے موسم میں یا جہاں موسم سرد پایا جاتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے, اور اس میں کچھ بلغم یعنی زردی مائل کا بلغم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اس کو تر کھانسی کہتے ہیں۔ اسباب کے لحاظ سے کھانسی کی اور مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں, جیسے سردی کی کھانسی ہوتی ہے, یہ اکثر زیادہ عمر کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں ہوتی ہے اور رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ بلغمی کھانسی ہوتی ہے, اس میں سانس کی تنگی ہو جاتی ہے بلغم کی وجہ سے اور اس میں بلغم بھی خارج ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا ہے کہ اس میں بلغم بہت کم خارج ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے پرانی کھانسی۔ پرانی کھانسی سے مراد یہ ہے کہ اس میں آلات تنفس یعنی کہ جو آپ کے سانس لینے کے جو سسٹم ہے اس کی جو نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بار بار آدمی کو کھانسی ہوتی ہے جو کم و بیش چار ہفتے تک یعنی دو سے چار ہفتے کا ٹائم پیریڈ اگر اس میں ہوتا ہے تو وہ پرانی کھانسی کہلاتی ہے۔ اسی طرح تپیدک کی کھانسی یعنی ٹیوبرکلوسس ٹی بی کی کھانسی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شدید کھانسی, اس میں بار بار کھانسی آتی ہے اور بخار بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ ایک کالی کھانسی ہوتی ہے جو اکثر بچوں میں ہوتی ہے اور اس میں ایک دورہ سا پڑتا ہے یعنی جس کو کلسٹر کہتے ہیں وہ دورہ سا پڑتا ہے اور کھانستے کھانستے چہرہ نیلا ہو جاتا ہے اور سیٹی کی سی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ ایک نزلے کی کھانسی ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ نزلہ اور زکام کی وجہ سے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کھانسی کی ہم نے وجوہات بتا دی تھی۔ اسی کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم تذکرہ کیا تھا کالی کھانسی کا، کہ کالی کھانسی کو بیسیکلی ہوتی کیا ہے. کالی کھانسی ایک جراثیم ہوتا ہے پرٹیوسس، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ سانس لینے والے راستے کے اوپر کی طرف اور پھیپڑوں میں اچانک انفیکشن کا حملہ ہوتا ہے. یہ بیماری عام طور پر تین مرحلوں میں ہوتی ہے. اس کی ابتدا آپ کے بچے کو ہلکا زکام کی طرح کے علامات، مثلا ناک کا بہنا، ہلکی کھانسی سے شروع ہوتی ہے. دوسرے مرحلے میں کھانسی بہت شدید ہو جاتی ہے، اس میں دورے کی کیفیت پڑنے لگ جاتی ہے، یعنی کلسٹرز کی صورت آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں بچے کو بار بار شدید کھانسی ہوتی ہے. کھانسی کے ساتھ بچے کو سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو سانس کھینچنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. جب وہ سانس کھینچتا ہے تو ایک چیخ سی سی آواز اس کے نکلتی ہے سانس لینے میں، جس کی وجہ سے اس کو ہم عمومی طور پہ ووپ کہتے ہیں، یعنی کہ ووپنگ کف اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے. اس کا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ریپریس اپنا صحتیابی کی طرف یا شفایابی کی طرف جانے کی سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں متواتر افاقہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن ہلکے درجے کی کھانسی پھر بھی رہتی ہے. اس طرح اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اس میں جو مین علامات ہوتی ہے کالی کھانسی کے اندر، وہ ہوتی ہے متواتر اور شدید کھانسی، کھانسی کے بعد قے کا آنا. اب اس میں دودھ، غذا یا بلغم کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے. اور کھانستے وقت رنگ کا، چہرے کا رنگ بدل جانا، یعنی کہ یا تو وہ نیلا ہو جائے گا یا بہت زیادہ لال ہو جائے گا
کھانستے وقت. ڈاکٹر صاحب، یہ بچوں کے عموماً یہ الٹی ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟
دیکھیں، کھانستے وقت جب الٹی ہوتی ہے، تو جب کھانس رہا ہوتا ہے تو گلے کی کیفیت میں پریشر پڑ رہا ہوتا ہے. جب کھانستے ہیں تو آپ کے ابڈومینل مسلز جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے سکڑن ہو رہی ہوتی ہے مسلز پٹھوں کے اندر. اس کی وجہ سے وہ پریشر ہوتا ہے، تو وہ اسٹمک پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے وہ وومٹ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے عمومی طور پہ کھانسی ہونے کی. اس میں ایک جو نشانی ہے وہ سانس لیتے وقت جو چیخ کی سی آواز نکلتی ہے، وہ اس کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کو
کالی کھانسی ہے.
ٹھیک ہے نا، وہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے،
ووپنگ کف.
اب اس کو آپ بچا کس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ تو ایک تو ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو تمام علامات جو ہیں وہ آپ بتائیں کہ یہ کیفیت ہے، یہ مسئلے ہیں، تو ڈاکٹر اپنے حساب سے جو بھی ادویات تجویز کرتے ہیں وہ ادویات لیں. لیکن گھر میں آپ نے کیا نگہداشت کرنی ہے؟ تو گھر میں جو ہم نے بچوں کی نگہداشت کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے تو اس کو ماحول ایسا دینا ہے، ہم نے بچے کو ایٹموسفیئر جو ہے آپ کے کمرے کا، ایک تو نمی آپ کے کمرے کے اندر خشکی نہیں ہونی چاہیے.
کالی کھانسی جو پھیل جاتی ہے انفیکشیس ہے،
کالی کھانسی انفیکشیس ایسے میرے خیال میں تو نہیں ہوتی.
نہیں،
کالی کھانسی نہیں پھیلتی ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کا ٹیمپریچر وغیرہ ہوتا ہے
وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر. ابھی جیسے کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسنے میں کیا احتیاطیں بچوں کو کرنی چاہیے، یا والدین کو کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے اس دوران، جس دوران کھانسی ہو رہی ہے بچوں کو؟
دیکھیں، جب کھانسی ہوتی ہے بچوں کو تو بہتر یہ ہے کہ اس میں ایک تو سب سے پہلے ان کی جو کھانسی ہونے کی وجوہات ہیں اس پہ غور کریں.
صحیح،
کس بچے کو کھانسی ہوئی کیوں، کیا کوئی ایسا وائرل انفیکشن اس کو ہوا جیسے نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو کھانسی. ابھی ہم ایک عام کھانسی کی بات کر رہے ہیں، ہم کالی کھانسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. کہ وہ اس کی ایک وجہ دیکھے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا اس کا ایٹموسفیئر، اس کا ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے، مطلب غذا ایسی ہے، یا ایسی جگہ پہ بچہ پڑھنے جاتا ہے جہاں پہ ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ ہے، دھول وغیرہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو کھانسی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو ماحول کو چیک کر لے اس کو. اگر وہ ماحول میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کے کھانے پینے کی عادات کو چیک کر لے کہ کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں استعمال کر رہا جس سے کھانسی ہو رہی ہو، جس سے گلا خراب ہو رہا ہو، یا زکام وغیرہ کی کیفیت اس کو پیدا ہو رہی ہو تو وہ کھانسی ہو رہی ہے.
اچھا، ان لوگوں کو، والدین کو یہ چیز کنسیڈر کرنی چاہیے کہ بچے کو سال میں 3-5-6 یہ ایپیسوڈ ہو رہا ہے، بار بار کھانسی ہوتی ہے، پھر علاج ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد پھر بیمار پڑ جاتا ہے، پھر ریپیٹڈ کھانسی ہو جاتی ہے، तो इससे फिर क्या समझना चाहिए?
देखिए उमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि आजकल बच्चे जो हैं वो केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उनके खाने पीने के मामलात हैं वो इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड, अच्छे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, तो वो उसमें उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि साल में 5-6 दफ़ा तो हो ही जाती है खांसी। अगर उस मामलात से हट के अगर दोबारा उसको खांसी हो रही है कि उसके जो मामलात हैं खाने पीने के, या उसको कोई एलर्जी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद उसको खांसी हो रही है, तो उसका प्रॉपर चेकअप करना चाहिए।
तो ये 5-6 दफ़ा खांसी का साल में एपिसोड होना नॉर्मल है?
देखें बच्चों में तो उमूमी तौर पर इसको नॉर्मल ही कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों की गिज़ा ऐसी होती है ना, अब वो रहती कितनी देर है,
सही,
ठीक है ना। अगर फर्ज करेंगे 5-6 दफा हो रही है और वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज्यादा क्रॉस कर रही है, तो फिर थोड़ा सा तशवीश वाली बात होती है, क्योंकि वो क्रॉनिक कफ में चले जाता है। लेकिन अगर वो कुछ अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म हो जाती है, तो मतलब सीजनल खांसी है, तो जो बच्चे की जो नॉर्मल रूटीन है उसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें जो है बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जब बच्चे का जो कमरा है या जहाँ वो बच्चा रहता है, तो कोशिश करें कि उस कमरे में नमी वगैरह की जो है कैफियत वो बेहतर रहे, बहुत ज़्यादा खुश्की ना हो कमरे के अंदर, क्योंकि उमूमी तौर पे कमरा वगैरह बंद कर देते हैं और वो हीटर वगैरह चला देते हैं, जो थोड़ी बहुत हवा में नमी होती है वो हीटर की वजह से वो और ख़त्म हो जाती है,
ड्राइनेस
सर्दियों के सीज़न में ख़ास तौर पर ड्राइनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से इसमें ये आपकी खांसी का बढ़ जाती है उसमें।
सही,
तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा सूरत हाल ना हो, लेकिन अगर ऐसा है भी और ठंडा मौसम है, ठंडे इलाके में रह रहे हैं और हीटर लगाने की ज़रूरत है आपको, तो बेहतर है कि कोई लिक्विड कोई पानी वगैरह जो है ना वो हीटर के साथ हो, ताकि वो फ्यूम वगैरह बनता रहे, तो एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ी सी नमी मौजूद रहेगी, तो उसमें खांसी नहीं होगी। दूसरा, नमकीन महलूल यानी कि नमकीन, नमक का पानी उमूमी तौर पर मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, वो उसके नाक में इस्तेमाल करवाएं, और नाक और गले में बलगम को बहने से रोकने में मददगार साबित होता है वो। रात को सोते वक्त कोशिश करें कि उसकी गर्दन जो है ना तकिए से ऊपर हो, सॉफ्ट हो, और करवट से अगर लेटे तो ज़्यादा अच्छा है। अब करवट से लेटने में थोड़ा सा ये मसला होता है कि छोटे बच्चे उमूमी तौर पर करवट से लेट नहीं पाते,
या तो उनकी तकिया लगा दें।
एग्जैक्टली, तो आप अगर उसको थोड़ा सा करवट देके तकिया, तो खैर बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कोई चादर कोई फोल्ड करके या कोई ऐसे छोटा सा कपड़ा फोल्ड करके लगा देंगे, थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है।
ये बड़े बच्चे को भी कर सकते हैं, 4 साल 5 साल
बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो थोड़ा करवट से लेटेगा ना। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपको खांसी हो रही है, और उमूमी तौर पर यह शिकायत होती है कि रात के टाइम ज़्यादा खांसी
बढ़ जाती है,
ठीक है ना। जब रात के टाइम ज़्यादा खांसी होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि जब आदमी लेट रहा होता है, कि नॉर्मल तो आप बैठे हुए हैं या बात कर रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका नज़ले का पानी जो है ना वो बाहर निकल रहा होता है, लेकिन जब आप लेट रहे होते हैं तो वो बैक साइड पे गिरता है, पोस्ट ड्रिबलिंग होने लग जाती है, पीछे गिरने लग जाता है। जब वो पीछे गिरता है तो फिर ये आपको धसके वाली खांसी निकलती है। अगर आप करवट से लेटेंगे तो पीछे गिरने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, तो खांसी में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। पीने वाली अशिया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, सादा पानी वगैरह जो है छोटे छोटे गिलासों में छोटे छोटे करके थोड़ा थोड़ा करके उनको पिलाते रहें, ताकि पानी की कमी ना रहे, धुएं की जगह से जाने से परहेज़ करवाएं बच्चों को। और क्या कहते हैं इसके उमूमी तौर पे ये होता है कि नाक के अंदर है वो सूख जाता है नाक जो है ना, तो
जवाब हो जाता है,
ड्राइनेस हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि उमूमी तौर पर नाक साफ हो नहीं पाता, तो बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो इसके बल्ब वगैरह मेडिकल स्टोर से मिलते हैं,
सही है,
वो आप बल्ब के जरिए जो है नाक साफ किया जा सकता है, ताकि उसके सांस लेने का जो एरिया है वो क्लियर हो
जाए। तो ऐसे भी है कि इसको चेकअप भी कर लिया जाए, घर में भी खुद देखभाल कर लिया जाए कि नाक साफ है क्या नहीं।
ये घर के लिए बता रहा हूँ मैं, जो ये चीजें बता रहा हूँ,
जब नजले की शिकायत हो तो
हाँ, ये है ही घर के लिए, घर में आप ये एहतियात कर सकते हैं, बाकी तो काम डॉक्टर का है, डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो वो खुद ही एहतियात बताते चले जाएंगे, तो ये इसका खाली खांसी का आप कर सकते हैं। अब जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है काफी,
डॉक्टर उर्दू में तपेदिक बोलते हैं,
तपेदिक बोलते हैं उर्दू में, और काफी लोग जो है
इसको पुरानी खांसी भी बोलते हैं।
नहीं, पुरानी खांसी तो आप नहीं कह सकते इसको कि पुरानी खांसी होगी, पुरानी खांसी तो फिर वो क्रोनिक कफ की तारीफ ही अलग हो जाती है ना। तपेदिक तो आप पुरानी खांसी की एक वजह कह सकते हैं,
वजह है,
एक वजह
अमूमन जो है ना क्रोनिक कफ की हिस्ट्री मिल रही होती है अमूमन। हाँ, मरीज जो आते हैं वो ये कि बहुत अरसे से खांसी की शिकायत है, तो इंशाल्लाह अभी आप अर्ज कर दें।
इसमें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के हवाले से ये काफी कदीम मर्ज है जो काफी अरसे से यानी कि समझ लें कि सदियों से ये बहुत
सही
केसेस इसके चलते आ रहे हैं। इसको कमोबेश 5000 साल पहले इसको जो है ना तशखीस किया गया था, और इसको जो तशखीस किया था वो 370 कबले मसीह में आसपास कमोबेश इसको तफ्तीश किया गया था। और इसमें अगर मुख्तलिफ कंट्रीज के अगर हम लिटरेचर वगैरह का निकाल के देखते हैं तो हमें इसके बाद की भी हिस्ट्रीज कुछ मिलती हैं, लेकिन वो इतनी अथेंटिक नहीं मिलती हैं। तो ये काफी पुरानी बीमारी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आजकल फी जमाना ये क्योरेबल है, इसका इलाज मौजूद है, इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका इलाज आप नहीं करते हैं तो ये आपके लिए जान को खतरा बन सकता है।
अब जैसे डॉक्टर साहब इसके जैसे जिनको टीबी है या सस्पेक्ट कर रहे हैं इनकी अलामतें क्या क्या होती है, मेजर मेजर या करीब करीब?
देखिए टीबी की जो एक मेन अलामत होती है उसमें दो तीन बड़ी बड़ी अलामतें होती हैं। नंबर एक तो ये है कि उनका बुखार, ठीक है ना, टेम्परेचर होता है लो ग्रेड टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बुखार नहीं होता और ज्यादातर रात के टाइम होता है। यानी
लो ग्रेड से मतलब ये जिस्म में हल्का हल्का सा गर्म हो रहा होता है, अमूमन मरीज ऐसी कंप्लेन करता है कि शाम के बाद जिस्म गर्म होने लगता है।
हाँ
ऐसा ही है
बिल्कुल, मतलब वो तकरीबन ये है कि 100-101 के करीब वो टेम्परेचर रहेगा उसको, और सुबह होने तक वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो है उसमें वजन की कमी,
वजन भी गिर,
वजन भी बहुत तेजी के साथ गिर रहा होता है।
लेकिन ये सब ये वजन का कम होना, बुखार भी मौजूद है लेकिन इसके साथ खांसी भी मौजूद होती है।
मैं उसी पे आ रहा था, खांसी पे जब आप आएंगे तो आपका इसका मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है।
सही,
ठीक है ना। अगर खांसी नहीं है और ये दूसरी अलामत इसके साथ में आ रही है,
बुखार है और वजन भी कम हो रहा है,
और एक और इम्पोर्टेंट चीज है भूख भी खत्म हो जाती है।
सही,
ठीक है ना, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है आदमी की, खांसी रहती है उसको, वजन गिरने लग जाता है, और शाम के टाइम उमूमी तौर पर बुखार की कैफियत सामने आने लग जाती है। तो जिन में ये अलामत पाई जाती हैं तो फौरी तौर पे वो ये करीबी डॉक्टर से रुजू कर ले ताकि इसकी प्रॉपर तशखीस की जाए।
इसका जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं आसानी से हो जाते हैं?
बहुत आसानी से टेस्ट हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। किसी जमाने में ये मसले मसाइल हुआ करते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह इतना सब जगह पे ये इलाज होता है, अब तो गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी जो है ना उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है, मुख्तलिफ कंपनीज जो है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करती हैं। तो इलाज करवाना बहुत जरूरी है, बहुत इजीली अवेलेबल इलाज है,
मतलब ये तो इसका टेस्ट भी इजीली अवेलेबल है, इलाज भी इसका इजीली अवेलेबल है। लेकिन किन लोगों को इस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? जैसे किसी की फैमिली में अगर एक को हो गई है तो दीगर फैमिली के जो मेंबर्स हैं इन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए कि इसको स्क्रीनिंग करा लें?
नहीं बिल्कुल, इसमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, लेकिन अब ये है कि उनके फैमिली में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टीबी हुई किस चीज की है। अब टीबी देखें, टीबी तो ये बीमारी है कि टीबी हेड टू टो
किसी जगह की हो सकती है,
सही, कहीं की भी हो सकती है। लेकिन कुछ टीबी ऐसी होती है जिनमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, बिलखसूस जो आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम की टीबीज होती हैं, चाहे अपर हो चाहे लोअर रेस्पायरेटरी, यानी कि आपके जो
फेफड़ों
की है या गले की कोई टीबी होती है, वहां पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ रही होती है।
अभी इसका डॉक्टर साहब स्टैटिस्टिक देख रहे थे तो 2 मिलियन पीपल लोग जो कमोबेश एक साल में इंतकाल कर रहे हैं इस टीबी की वजह से, और हर साल 9 मिलियन केसेस टीबी के पैदा हो रहे हैं। 80% इसके जो केसेस हैं अफ्रीका एशिया के अंदर मौजूद हैं। तो हम लोगों को ज्यादा जरूरत है स्क्रीनिंग की?
नहीं,
यहाँ हम बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं।
नहीं, रिस्क फैक्टर तो है ना हमारे यहाँ। देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अनहाइजेनिक कंडीशंस
सही
बहुत ज्यादा होती हैं, और उसी के अंदर जो है इसमें रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
इसमें एक वजह ये भी है कि जो हमारे यहाँ टीबी हुई इसका इलाज करवाना शुरू करते हैं लेकिन जल्दी छोड़ देते हैं, अनट्रीटेड केस बहुत मौजूद है।
असल में मसला ये है कि इसका जो इलाज अगर हम शुरू में चले जाते हैं
सही
तो थोड़ा सा तकलीफ देता, मरीजों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद दवाइयों की आपको खानी पड़ती है।
सही, कम हो गए 6-7 मेडिसिन एक साथ वो लेनी होती है।
वो कम, अगर हम गोलियों की तादाद गिनना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में 12-15 गोलियां बन जाती हैं।
सही,
तो वो मरीज के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आती गई हैं। अब तो मेरे ख्याल में 2 गोलियां या 3 गोलियां होती हैं, वेट के हिसाब से दी जाती हैं, किसी किसी में 4 गोलियां भी दी जाती हैं। वो 4 गोलियां आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसके अंदर मरीज का साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करता। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस्तेमाल कर लेगा, इतना इस्तेमाल करने के बाद फिर वो एक हिम्मत टूट जाती है।
अभी ऐसे भी तो होता है ना, साइंस सिम्टम जैसे खांसी हो रही है वो खत्म हो गए, बुखार भी खत्म हो गया, सिम्टम भी रिजॉल्व हो गए, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने की वजह?
देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि अगर अलामत खत्म हो गई तो इट डजंट मीन कि बीमारी खत्म हो गई।
जी
ठीक है ना, आपकी अभी अलामत खत्म हुई है, आपकी बीमारी आपका डॉक्टर बताएगा कि अब आपको हाजत है या नहीं,
तो वो भी कोई टेस्ट करके ही बताएगा ना।
एग्जैक्टली, वो लाजिम बात है, फॉलोअप होगा। जब गाय बगाय जब डॉक्टर आपको कॉल करता है कि आप फलाने दिन के बाद तशरीफ ले आइएगा, 1 महीने के बाद तशरीफ ले आइएगा, तो उसके बाद जब वो होता है तो उसके बाद वो टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, उसी हवाले से फैसला किया जाता है कि मजीद क्या कराया जाए। अब इसमें जो टीबी का जो बचाव है ना, वो भी बहुत आसान है।
सही,
बहुत सिंपल सा, बहुत आसान है कि BCG के टीके लगवाने हैं आपने,
यानी वैक्सीनेट करा लें।
वैक्सीनेट करवाने
हैं, तो यानी बच्चे भी शुरू में करा लें, बड़े हो गए तो वो भी करा सकते हैं।
बच्चों को ही उमूमन लगाई जाती है शुरू में
लगा जाए,
बड़े को ही लगाई जाती है। अब तो मतलब ये तो पॉलिसी का एक हिस्सा बना हुआ है कि आपने इसको लगाना ही लगाना है, वो लग ही जाती है, तो वो लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। उमूमी तौर पर बाद जो पेरिफेरीज के इलाके होते हैं जहाँ पे ये सपोर्ट मौजूद नहीं होती है या ये सहूलत मौजूद नहीं होती है, तो वहाँ पे कुछ केसेस रह जाते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे ज्यादातर BCG के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं।
तो भैया डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन से फायदा क्या होता है?
भाई, वैक्सीनेशन से ये फायदा होगा ना कि आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, मुदाफती सिस्टम जो है ना, वो इस काबिल रहेगा कि वो जरासीम उस पर अटैक नहीं कर सकेगा। ठीक है, जरासीम तो हर जगह हर लम्हे आपके साथ अटैक करता है।
सही,
ठीक है ना, ये टीबी का जरासीम भी सब पे अटैक करता है।
सही,
अब वो अटैक करने के बाद असर कब लेकर आता है? असर उस वक्त लेकर आता है जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है।
सही,
अब डिफेंस मैकेनिज्म क्यों फेल होता है? डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए फेल होता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए फेल, यानी कि आपकी मदाफती सिस्टम इसलिए फेल हो जाता है कि आपने एक्स्ट्रा चीजों को अडॉप्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग कर रहे हैं।
सही है,
ठीक है ना, अब सिगरेट भी रहे हैं। अब लोग सिगरेट से टीबी का क्या ताल्लुक है? सिगरेट से टीबी फैलाती है।
सही,
वो क्यों फैलेगी? क्योंकि आपका जब आप सिगरेट पियेंगे तो आपका इंटरनल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाएगा, अंदर जो जरासीम से लड़ने की मदाफत है कम हो जाएगी, तो अंदर जो आपके पास जरासीम अंदर बैठा हुआ होगा ना, उसको काम करने का मौका
नहीं करता।
तो वो जब वो मौका मिल जाता है तो फिर वो आपके साथ अलामत शुरू हो जाती है।
सही है,
ठीक है ना, तो इसमें बेस्ट यही होता है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं तो आप काफी हद तक सेफ हो जाते हैं इसके अंदर।
सही,
ठीक।
तो वैक्सीनेशन जैसे अब इस एज में भी, जैसे जो किसी ने बचपन में अगर वैक्सीनेशन नहीं की हो तो आप करा सकता?
करवा ले, करवाने में कोई हर्ज नहीं है।
सही,
करवा लें तो अच्छी बात है, सेफ साइड पर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उम्र में भी करवाई जा सकती है।
कौन कौन से लोग जो ज्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं, जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं वो रिस्क पे होते हैं या बच्चे ज्यादा रिस्क पे होते हैं?
देखिए, हर वो आदमी रिस्क पे होगा जिसका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होगा।
सही है,
ठीक है ना, अब उसमें बच्चे और बूढ़े वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जवान आदमी भी, आदमी उस वक्त भी होगा जो स्मोकर ज्यादा होगा।
इसमें मैं रिसर्च देख रहा था, कब उम्र 10% जो लोग टीबी से अफेक्टेड होते हैं वो उनकी एज जो ना 15 साल से कम है। 25 की एज के भी फैक्टर जो ना कम हो गए 25%, यानी 25 साल तक के जो एडल्ट्स हैं उनको भी अब अफेक्टेड हो रहे हैं इससे।
रीजन वही आता है ना, देखिए आप, क्योंकि आपके जो एक्टिविटीज हैं,
सही,
वो तब्दील हो गई।
सही,
जब एक्टिविटीज तब्दील हो गई हैं तो आपने अडॉप्ट कर लिया उन सारी चीजों को।
अभी जैसे कुछ कॉल्स हैं वो कॉल ले लें।
अच्छा ठीक,
कॉल से दूं मुझे।
अस्सलाम
वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मैं मुख्तार अबद सारी रावलपिंडी से हो रहा हूँ। सिलसिला क्लिनिक में मेरी डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि मुझे अक्सर औकात खुशक खांसी रहती है, जो कि मैं सेब खाने से या माल्टा खाने से ज्यादा होती है, तो बराह करम से मुझे रहनमाई फरमा दे। सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खुशी कौन दे रहे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मोहम्मद अकरम रजा अटारी शामिलाही पंजाब से। डॉक्टर साहब की फायदा में अर्ज है कि अल्हम्दुलिल्लाह खांसी के मौजू का दूसरा हिस्सा कर रहे हैं आज, तो ये जो मर्ज खांसी का है ये सारा दिन एक बंदा ठीक ठाक रहता है, तो रात को जब सो जाता है तो अचानक से उसकी जब आँख खुलती है तो खांसी शुरू होती है, और फिर ऐसी जोर की खांसी शुरू होती है 5-10 मिनट उसके निकल जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ है शुबा की ये क्या चीज़ है, ये रात को ही क्यों लगती है, दिन के वक्त क्यों नहीं, सारा दिन क्यों नहीं खांसी आती, इसके बारे में अगर कुछ बदली फोल या कोई एहतियात वगैरह करवा दें
इंशाल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
कामरान अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा मोहतरम डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि डॉक्टर साहब क्या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो खांसी काज करती हैं?
सही इंशाल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरा नाम बिलाल मुख्तार है, मैं मंडी बहाउद्दीन से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो ये पुरानी खांसी है इसका कोई बेहतर से बेहतर इलाज हमें बताएं, आपकी अनायत होगी।
पहला सवाल जो था इनका कि पुरानी खांसी हो रही है बहुत तवील अरसे से, जो कि बढ़ जाती है अमूमन माल्टा या सेब वगैरह खट्टी चीजें खाने से इनको खांसी बढ़ जाती है। इनकी आवाज से लग रहा था इनकी एज भी कुछ ज्यादा है, कम उम्र 40+। देखिए इनका अगर जैसे ये फरमा रहे हैं कि कोई चीज स्पेशली तुस्त चीज है खाने से इनकी खांसी बढ़ती है, तो इनको मुआयना करवाना चाहिए अपने ENT का, गले का मुआयना करवाना चाहिए कि उसमें कहीं ऐसे टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं है या गला खराब तो नहीं रहता उनका बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनको खांसी होती है। हाँ, अगर इसके साथ इनको दूसरी अलामत आती हैं, मिसाल के तौर पे बुखार रहता है या वज़न कम होने की शिकायत होती है या कोई और ऐसी अलामत होती है जिससे पुरानी बीमारी पुरानी खांसी की वजह से किसी बड़े मर्द होने का अंदेशा हो, तो मेरे ख्याल में इनको फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करके
स्पेशलिस्ट से
पहले ENT वाले को दिखा दें, ओपिनियन के ले लें, उनसे मशवरा कर लें और उसके हिसाब से कुछ अद्वियात आती हैं जो मेरे ख्याल में कुछ कोर्स के हिसाब से करवाई जाती हैं, तो उससे उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
अच्छा, दूसरे कॉलर थे, उनका सवाल ये था कि इनको अमूमन रात में खांसी होती है, दिन भर इनको खांसी?
इसका जवाब तो हम अभी पिछले डिस्कशन में दे के जा चुके हैं कि रात के टाइम खांसी होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब आप लेटे हुए होते हैं पोस्ट रिपलिंग होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि एकदम उठ जाते हैं, वो उठते ही इस वजह से हैं कि जब वो गिर जाता है तो चोकिंग हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है।
इनकी जो एज लग रही है इनको ये नहीं देखना होगा कि अपने DNS की तरफ अपनी तवज्जो देनी होगी, प्रोफेशन क्या है, काम क्या है,
बिल्कुल
धूल वगैरह
ये सारी चीजें तो लाजिम आते हैं, आपको देखनी होंगी कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये सिलसिला हो रहा है उनको। अगर ये कैफियत रहती है जैसे आपने फरमाया कि DNS का कोई प्रॉब्लम हो सकता है या कोई नाक की कोई
साइनस का बीमारी
हो सकती है, अलग की कोई बीमारी।
डॉक्टर साहब ये DNS क्या चीज होती है?
DNS इसको कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है ना, जो आपकी नाक है एक आम रूप में कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ जाना या गोश्त बढ़ जाना, ठीक है ना, तो ये तो आम रूप में आपने कह दिया और हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में DNS कह देते हैं।
सही है, तो लेकिन ये सस्पेक्टेड है, जरूरी नहीं कि ये इनको हो,
जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मशवरा कर लें ENT वाले से मशवरा कर लें।
तो दूसरा सवाल था कि ये पूछना चाह रहे थे कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो खांसी करती हैं?
ऐसी मेडिसिन हैं लेकिन बहुत रेयर है,
अमूमन वो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं उनमें ये बहुत कम है, एक
बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती लेकिन बहुत कम है, बहुत रेयर है।
अच्छा, एक सवाल था इनका इस्लाम भाई का, ये पूछना चाह रहे थे पुरानी खांसी के हवाले से कुछ मदनी फूल अता करते हैं।
पुरानी खांसी जैसे हमने अर्ज की कि पुरानी खांसी है, तो अब सवाल यही आता है कि इनका प्रोफेशन क्या है, अच्छा पुरानी खांसी की तारीफ भी बता दें कि खांसी कितने से कितने अरसे हो तो इसको
पुरानी खांसी को जो हम लेते हैं वो कम से कम 4 हफ्ते पुरानी हो, 4 हफ्ते से
कंटिन्यूअस, 4 से 8 हफ्ते जायद हो तो ये पुरानी खांसी, यानी 2 माह से जायद परसिस्टेंट खांसी हुई चली जा रही है तो उसको हम अंडर डेफिनेशन पुरानी खांसी ले लेंगे।
लेकिन इसमें एक चीज क्लियर ये करना है कि बाज औकात मरीज इलाज करवाता है, ठीक है ना, आज खांसी हुई, इलाज करवाया, 4 दिन ठीक हो गया, उसके बाद छोड़ दिया, उसने इलाज छोड़ दिया, फिर 5 दिन के बाद फिर खांसी हुई, फिर इलाज कराया, फिर छोड़ दिया, इस तरह करते करते वो 2-3 महीने गुजार देता है।
सही।
फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को 4 महीने से खांसी हो रही है, जब आप इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं तो डॉक्टर एकदम बड़ी चीज के ऊपर सोचता है।
सही,
ठीक है ना,
तो फिर डॉक्टर टेस्ट वगैरह भी लिख देता है,
टेस्ट लिख देता है, फिर वो उसके अंदर नॉर्मल आता है तो फिर वो दूसरे सिलसिले चल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि जब आपको अगर परसिस्टेंट यानी लगातार अगर मुसलसल खांसी है इलाज के बावजूद भी नहीं ठीक हो रही है, फिर आप उसको पुरानी खांसी में लेके जा सकते हैं।
लेकिन ये भी डॉक्टर ही लेके जाएंगे,
ये भी कोई डॉक्टर लेके।
सही।
जो हम टीबी पे बात कर रहे थे,
इसका इलाज,
टीबी का जो इलाज है इसमें जो अद्वियात वगैरह इस्तेमाल होती हैं, जो पुराने जमाने में हुआ करती थी उसमें बड़ी कॉम्बिनेशन थेरेपी आप हमारे यहाँ आजकल के जमाने में भी हैं, लेकिन उसको एक जगह जमा कर दिया है, पहले अलग अलग थी अब एक जगह जमा कर दिया,
तो अब ये ज्यादा आसान हो गया,
अब ज्यादा आसान हो गया और आसान हो गया।
अमूमन मरीज ये शिकायत करते हैं इसके दवा खाने के बाद तबीयत और खराब हो जाती है, दीगर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते।
इसमें देखें कॉम्प्लिकेशंस तो होती है।
सही।
कोई भी दवा है वो आप एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लाजमी बात है वो कहीं ना कहीं तो असर देगी,
साइड इफेक्ट्स।
बाज़ औक़ात आपके मेदे पे असर आता है, बाज़ औक़ात आपके जिगर पे असर आता है, बाज़ औक़ात आपकी आंखों पे असर आता है, बाज़ औक़ात आपकी पेट पे असर आता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे जरूरी नहीं सब में हो।
सही है।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वरना मदनी चैनल के नाज़रीन समझेंगे यार दवा खाने का फायदा क्या आ गया जब इतना सारा असर आएगा। लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स जो हम बताते हैं वो ये इसलिए बताते हैं कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर 500 मरीजों को ये अद्वियात दी गई तो 500 में से 2 मरीज को पेट में तकलीफ हो गई, 2 मरीज को जिगर में प्रॉब्लम हो गई, तो 4 मरीज को हो गई, लेकिन जो 498 मरीज हैं वो तो ठीक हो गए ना।
अच्छा, इसके बताने की नियत ये भी है कि जब इलाज आप शुरू करेंगे तो ये चीजें हों तो ये होना नॉर्मल है,
ये हो सकती है, जरूरी नहीं है सब में हो।
सही।
ये जरूरी
नहीं है कि कोई अलामत दौरान ट्रीटमेंट मिल रहा हो तो ये होना नॉर्मल है,
ये होना नॉर्मल है, ये होता है, लेकिन इसमें डॉक्टर से दोबारा रुजू करेंगे, डॉक्टर साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मसाइल हो रहे हैं, तो डॉक्टर देख के कोई ना कोई इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह निकालेंगे, या अद्वियात में रद्दोबदल करेंगे या ऊपर नीचे दवा करेंगे या उसका कोई और सोल्यूशन निकाल के इंशाल्लाह देंगे, लेकिन दवा बंद नहीं करेंगे,
बंद नहीं करेंगे।
दवा नहीं बंद करेंगे उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि जब आप दवा बंद कर देंगे तो जो आज आप इलाज मिसाल के तौर पर 100 रुपए का कर रहे हैं तो दवा बंद करने की सूरत में वो रेजिस्टेंट डेवलप होगा।
अब रेजिस्टेंट क्या होती है?
मतलब आप उसकी दवा का असर आपके जिस्म पे खत्म हो जाता है,
यानी जिस जरासीम के खिलाफ हम ले रहे हैं
दवा असर नहीं,
उसको खत्म करने के लिए
हाँ।
दवा उस पर असर नहीं करेगी,
नहीं करेगी वो, क्योंकि आपने डोज नहीं ले रहे प्रॉपर तरीके से।
सही।
जब वो नहीं लेंगे तो रेजिस्टेंट डेवलप होगा, तो जो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा उसके बाद जो इलाज करवाएंगे वो और ज्यादा महंगा पड़ता है।
सही है।
तो वो अफोर्ड करना आम आदमी की,
इस तरह का ये पेशेंट मेरी नजर में गुजरा था कि वो टीबी की मैनेजमेंट, टीबी डायग्नोज हुआ था, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी, कम हो गए 1.5-2 माह उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया ट्रीटमेंट, उसके बाद उनको कोई एक बीमारी हुई, उस बीमारी में उनको दोबारा वो ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो लेकिन उस डोज से जो पहला प्रिस्क्राइब डोज था उससे ज्यादा डोज में लेना पड़ा और मजीद कॉम्प्लिकेशन उनके अंदर डेवलप हो गए।
हाँ, उसमें देखें नुकसान तो फिर भी मरीज का ही होता है ना, कि लाजमी बात है आप जो डोज ले रहे हैं और फिर जेब का भी नुकसान है।
सही।
डोज भी बढ़ गई, अखराजात भी बढ़ गए, सारी चीजें हो गई, तो बेहतर ये है कि जो उस वक्त थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे,
इन कॉम्प्लिकेशंस को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, डॉक्टर से रबते में रखा जाए या फिर घरेलू ट्रीटमेंट भी किया जाए?
देखें जब आप इस तरह किसी भी क्रॉनिक बीमारी यानी कि पुरानी मुजी बीमारी का इलाज करवा रहे होते हैं तो डॉक्टर बाकायदा फॉलोअप का टाइम देता है।
सही।
कि यार आपने मुझे 15 दिन के बाद दिखाना है या महीने बाद दिखाना है या 2 महीने बाद दिखाना है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि उस फॉलोअप में आप फॉलो करें, जो वो डेट देता है उसको फॉलो करें। आप भले नॉर्मल हैं, भले ठीक हैं आप,
लेकिन उस डेट पे जाएं डॉक्टर से विजिट करने के लिए, उनको बताएं अपनी कैफियत बताएं। अगर आप ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज होती है जो आपको नहीं नजर आ रही होती, लेकिन डॉक्टर अगर उसको देखता है तो कोई फाइंडिंग मिल जाती है उसको,
सही,
तो वो पकड़ाई में आ जाती है, तो वो आगे जाके नुकसान ना हो उसको वहीं केयर कर ली जाती है। तो जितने दिन के बाद डॉक्टर विजिट के लिए बुलाता है जरूर विजिट करना चाहिए, ताकि इस मसले में ज्यादा नुकसान पैदा ना हो सके।
सही है, इंशाल्लाह। मुझे कुछ कॉल्स हैं डॉक्टर साहब, कॉल्स हैं मदीना।
डॉक्टर साहब से पूछना
था, मैं वाले
साहब हैं जो उनको टीबी थी पहले, तो ये पूछना था उनका एक फेफड़ा वो खत्म हो चुका है, वो चलते हैं तो उनको सांस चल जाता है, इसके बारे में कुछ पूछना था डॉक्टर साहब से।
इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
डॉक्टर साहब, आपके वर्गा में सवाल ये था कि एक महीने से मुझे खांसी हो रही है, जिसकी वजह से जो है कोई चीज खाने नहीं होती, लगती है हर चीज, उसका वो इलाज बता फरमाए।
इंशाल्लाह, एक महीने से खांसी हो रही है और कोई चीज लग नहीं रही है।
सही, इंशाल्लाह।
लग नहीं रही है से मुराद क्या है?
सही
के आया खाया ही
दवा
नहीं,
इन पे असर नहीं कर रही है।
नहीं, ये क्लियर नहीं किया इन्होंने कि दवा असर नहीं कर रही, ये खाना नहीं खाया जा रहा, लग नहीं रही। एक लफ्ज ये भी इस्तेमाल करते हैं कि जो कुछ खा रहे हैं वो लग नहीं रहा।
मजीद कॉल से मदीना।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे वाले साहब को एक साल हो गया है, खांसी के साथ खून आता है और मुंह भरकर खून आता है। एक साल हो गया, उनके तमाम चेकअप भी करवाए हैं, मेडिसिन भी उनको खिला रहे हैं, लेकिन उनका खून नहीं रुक रहा। एक माह, दो माह, एक हफ्ते, दो हफ्ते बाद खून आना शुरू हो जाता है फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अच्छा डॉक्टर साहब, इनका जो पहला सवाल था इस्लाम भाई का, वो ये बता रहे थे इनके टीबी हुई हुई इनके वाले साहब को, और इनका एक फेफड़ा ख़त्म हो गया, चलते हुए सांस फूल रही है। आपके टीबी में फेफड़ा ख़त्म हो सकता है ट्रीटमेंट के साथ या विदाउट ट्रीटमेंट?
देखें, फेफड़ा तो उसी को ख़त्म होगा ना जब आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे।
सही,
ठीक है ना। अब कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होगी,
वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं करा,
वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं करा,
अगर अभी करा लिया हो तो?
देखें, वो अब खत्म होने से मुराद क्या है, आया क्लैप्स हो गया?
सही,
या कंसोलिडेशन हो गई है उसके अंदर, ठीक है ना। अब जहां दो फेफड़े काम कर रहे थे आपके सांस लेने के अंदर, अब वहां पे एक को काम करना पड़ रहा है।
सही है,
ठीक है। तो एक को काम करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा है, ठीक है ना। तो इसका तो अब कोई और सोल्यूशन है नहीं, थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, जो भी उनके मामलात हैं उसमें उनकी केयर करें, खाने पीने में केयर करें, चलने फिरने में भी केयर करें, तो इंशाल्लाह सोचल उनकी कैफियत में बेहतरी आ जाएगी।
दूसरा सवाल था कि इनको एक महीने से खांसी हो रही है, फिर शायद दवा वगैरह ले रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा।
लेकिन खांसी एक महीने से हो रही है तो वाकई एक महीने से हो रही है, कुछ दवा लेके छोड़ देते हैं फिर होती है।
अगर
लगातार एक महीने से है तो फौरी तौर पे चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखवा दें, ताकि उसका कोई हल निकाला जाए।
तो आखिरी जो सवाल था वो ये था कि इनको एक साल से खांसी हो रही है, खांसी में बलगम में खून भी आ रहा है,
गालिबन वालिद साहब की बात
जी
कर रहे थे,
ये तो सीरियस नोट है।
अल्लाह अज़्ज़ल इनके वालिद साहब को सेहत अता फरमाए। अगर ये मामलात हैं तो यकीनन इन्होंने किसी न किसी को चेक कराया होगा। जरूरी नहीं है कि मुंह से खून आना टीबी की ही अलामत है, कोई और सूरत हाल भी खुदा ना खास्ता हो सकती है, लेकिन ये अच्छी अलामत नहीं है। फौरी तौर पे इसको फॉलोअप करें, किसी स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाएं। यकीनन दिखाया भी होगा आपने, तो बेहतर है कि अगर आपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दिया तो कार्डियक स्पेशलिस्ट को भी एक दफा दिखाएं, ताकि उनसे भी मशवरा ले।
अभी एक रूहानी इलाज भी है डॉक्टर साहब, इसी हवाले से आप वो भी सुन लेते हैं। रूहानी इलाज चला दीजिए।
टीबी और खांसी का रूहानी इलाज, जिस दर्द या मर्ज पर तीन रोज तक 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुजूर दिल से पढ़कर दम किया जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे आराम आ जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो बीमार आए शिफा पा के जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही। سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی.